एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की बात करने जा रहे हैं जो महज एक किताब नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है।
हाँ, एक मिथक की तरह।
बिल्कुल, गैब्रियल गार्सिया मार्केस का 100 Years of Solitude, यानी 100 वर्ष का एकांत।
और इसे अक्सर जादुई यथार्थवाद, मैजिकल रियलिज्म का शिखर माना जाता है।
सही कहा। और इसके लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केस प्यार से लोगों ने गाबो कहते थे, कोलंबिया के थे और 1982 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला उन्हें।
उनकी लेखनी में वो कमाल का मिश्रण था यथार्थ और कल्पना का, जिसने लैटिन अमेरिकी साहित्य को एक नई पहचान दी दुनिया भर में।
हाँ, वो लैटिन अमेरिकन बूम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे। और ये किताब 100 Years of Solitude 1967 में जब छपी तो रातों रात एक साहित्यिक सनसनी बन गई।
बिल्कुल।
तो आज हम इसी महाकाव्यात्मक उपन्यास की गहराइयों में उतरेंगे। ये सिर्फ बोएंदिया परिवार की कहानी नहीं है, 7 पीढ़ियों की
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एकाकीपन की कहानी है, समय के चक्र की, इतिहास और स्मृति की भी।
हाँ, और वो काल्पनिक शहर माकोंदो, कैसे वो बनता है, कैसे उसका विकास होता है और फिर
उसका पतन।
हाँ, और इस पूरे सफर में वो सवाल उठता है नियति बनाम इच्छा शक्ति का। क्या बोएंदिया परिवार अपने एकांत से कभी निकल पाया? इसी सवाल से शुरू करते हैं।
कहानी की शुरुआत होती है एक तरह के पलायन से। होसे अर्काडियो बोएंदिया और उसकी पत्नी उर्सुला इग्वारान,
जो उसकी कजन भी थी, है ना?
जी हाँ, चचेरी बहन। और इसी रिश्ते से जुड़ा एक डर था और एक हत्या का अपराध बोध भी। इसी सब से भागकर वो एक नई जगह की तलाश में निकलते हैं
और पहुंचते हैं माकोंदो।
हाँ, एक नदी के किनारे वो इस शहर की नींव रखते हैं। शुरुआत में तो माकोंदो जैसे कोई अलग थलग स्वर्ग हो, दुनिया से एकदम कटा हुआ।
जैसे आपने कहा, चीजें इतनी नई कि उनके नाम तक नहीं, बस इशारा करना पड़ता है।
बिल्कुल, मासूमियत का दौर लगता है वो।
हाँ, एक अचरज भरा समय। लेकिन यहीं पर वो जो होसे अर्काडियो बोएंदिया का जुनून है,
जिप्सियों के लाए हुए चमत्कारों के लिए।
हाँ, चुंबक, दूरबीन, बर्फ और फिर वो कीमिया का चक्कर, कहीं ना कहीं इसी जुनून में वो एकाकीपन का बीज भी छुपा है जो बाद में पूरे परिवार पर हावी हो जाता है।
सही कहा, ज्ञान की वो प्यास उसे जैसे अपने ही परिवार से, असल दुनिया से दूर कर देती है।
और ये अलगाव ज्यादा दिन टिकता भी नहीं। जल्दी बाहरी दुनिया माकोंदो पहुंच जाती है, सरकार, राजनीति,
और फिर वो गृह युद्ध, कोलंबिया के जो कभी न खत्म होने वाले युद्ध थे उदारवादियों और रूढ़िवादियों के बीच, माकोंदो भी उसमें खिंच जाता है।
और यहीं से कहानी में आते हैं कर्नल ऑरेलियानो बोएंदिया,
होसे अर्काडियो और उर्सुला के दूसरे बेटे, उपन्यास के सबसे यादगार पात्रों में से एक,
जो पहले एक शांत सुनार था, सोने की छोटी छोटी मछलियां बनाता था
और फिर बन जाता है एक महान क्रांतिकारी नेता।
लेकिन उसका सफर कितना अजीब है, विडंबना से भरा। 32 क्रांतियां करता है और हारता है सारी की सारी।
और उसके 17 बेटे अलग अलग औरतों से, वो भी सब मारे जाते हैं।
युद्ध उसे अंदर से एकदम खोखला कर देता है, जैसे वो महसूस करने की, प्यार करने की क्षमता ही खो बैठता
है। हाँ, वो अपनी ही प्रसिद्धि के एकांत में कैद हो जाता है।
तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है या मार्केज यहाँ युद्ध की निरर्थकता पर, सत्ता के उस अकेलेपन पर टिप्पणी कर रहे हैं?
मुझे लगता है ये दोनों बातें हैं। कर्नल का चरित्र लैटिन अमेरिका के इतिहास के उन अनगिनत असफल विद्रोहों का आईना भी है और साथ ही एक इंसान के अपने ही कर्मों के बोझ तले अकेले पड़ जाने की कहानी भी।
वो जो सोने की मछलियां बनाता था फिर उन्हें पिघला देता था।
हाँ, वो जैसे उसके जीवन के उस अंतहीन निरर्थक चक्कर का प्रतीक बन जाता है। माकोंदो की वो शुरुआती मासूमियत तो अब कब की खत्म हो चुकी है।
युद्धों के बाद आता है एक नया दौर, प्रगति का या शायद झूठी प्रगति का।
रेल की पटरी आती है और इसके साथ आती है एक अमेरिकी केले कंपनी।
और माकोंदो अचानक बदल जाता है, एक व्यस्त चहल पहल वाला शहर।
पैसा बरसता है, खासकर तीसरी पीढ़ी के ऑरेलियानो सेगुंडो के लिए। वो तो जैसे भोग विलास में ही डूबा रहता है।
उसकी रखेल पेट्रा कोर्ट्स के साथ उसके रिश्ते में भी कुछ जादुई सा था ना, जिससे उनके जानवर बढ़ते जाते थे।
हाँ बिल्कुल, उनके प्रेम से जानवरों में जैसे अलौकिक उर्वरता आ जाती थी। वो बहुत अमीर हो जाते हैं।
तो ऊपर से ये समृद्धि का दौर लगता है।
हाँ, पर इसकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। ये केले कंपनी स्थानीय लोगों का, मजदूरों का बहुत बेरहमी से शोषण करती है। ये समृद्धि मतलब बाहरी है, खोखली। इसने जैसे माकोंदो की आत्मा ही छीन ली।
मार्केज़ यहाँ नवो उपनिवेशवाद पर, उस बाहरी पूंजीवाद पर एक तीखी नजर डाल रहे हैं।
हाँ, कैसे बाहरी ताकतें आकर सब कुछ बदल देती हैं, अपनी शर्तों पर चलाती हैं।
और ये तथाकथित समृद्धि फिर एक भयानक त्रासदी में बदल जाती है जब केले बगान के मजदूर हड़ताल करते हैं।
तब होता है वो नरसंहार। कंपनी और सरकार मिलकर एक साजिश करते हैं। हजारों मजदूरों को बुलाया जाता है स्टेशन पर,
मर्द, औरतें, बच्चे सब,
बातचीत के बहाने, और फिर सेना उन पर गोलियां चला देती है।
3,000 से ज्यादा लोग
हाँ मारे जाते हैं, और रात के अंधेरे में उनकी लाशों को ट्रेन में भरकर केले की तरह समुद्र में फेंक दिया जाता है।
और सबसे ज्यादा डरावनी बात
कि इस पूरी घटना को इतिहास से मिटा दिया जाता है। सरकारी तौर पर कहा जाता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।
ये पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतिहास का ऐसा दमन।
सिर्फ एक व्यक्ति, होसे अरकादियो सेगुंडो, जो ऑरेलियानो सेगुंडो का जुड़वा भाई था और उस नरसंहार में बच गया था, वो इस सच को याद रखता है।
ये स्मृति की शक्ति और कैसे सत्ता उसे कुचलने की कोशिश करती है, इसका जबरदस्त चित्रण है। क्या ये सिर्फ कोलंबिया के इतिहास से जुड़ा है? जाहिर है प्रेरणा वहां से है, कोलंबिया के इतिहास की सच्ची घटनाओं से, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है, सार्वभौमिक है। कैसे सच को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कैसे सामूहिक याददाश्त को बदला जा सकता है।
बोरिस नरसंहार के फौरन बाद
वो बारिश,
हाँ वो अंतहीन बारिश, 4 साल 11 महीने और 2 दिन तक लगातार,
जैसे बाइबल की बाढ़।
बिल्कुल, वो बारिश केले कंपनी के सारे निशान बहा ले जाती है, शहर सड़ने लगता है और अपने अंतिम पतन की ओर बढ़ता है।
प्रकृति का बदला, या शायद एक तरह की सफाई जो यादों को भी मिटाना चाहती है। इसके बाद मकोंडो कैसा रह जाता है?
बारिश जब रुकती है तो मकोंडो एक भूला बिसरा खंडर है, उजाड़। बुएंडिया परिवार का घर भी ढह रहा है,
उस पर जंगल और चींटियों का कब्जा।
हाँ, और आखिरी पीढ़ियां लगभग पूरे एकांत में जी रही हैं, अपने पुरखों के भूतों के साथ। और यहीं हमें मिलता है आखिरी बुएंडिया, ऑरेलियानो बाबिलोनिया,
वो मेमे का नाजायज बेटा।
हाँ, जिसे घर में छिपाकर पाला गया था।
हाँ।
वो पढ़ाकू है और अपना पूरा जीवन मेल्खियादेस की उन रहस्यमयी पांडुलिपियों को समझने में लगा देता है।
मेल्खियादेस, वो जिप्सी जो शुरू में आया था ज्ञान और जादू लेकर, उसकी वो पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी हुई।
हाँ, ऐसा कहा गया है। शायद संस्कृत का जिक्र उन्हें एक तरह की प्राचीन सार्वभौमिकता देता है।
वो पांडुलिपियां ही शायद परिवार की नियति की कुंजी हैं।
बिल्कुल, और अंत में ऑरेलियानो बाबिलोनिया उन्हें समझ लेता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है,
बल्कि वो उनके अपने परिवार का ही इतिहास है।
हाँ, 100 साल का इतिहास, ठीक वैसा जैसा घटित हुआ और जैसा उसी पल घटित हो रहा था।
और ये ज्ञान उसे कब मिलता है?
जब वो अपनी ही चाची अमरंता उर्सुला के साथ एक बेहद भावुक और वर्जित प्रेम संबंध में होता है।
वही डर जिससे उर्सुला हमेशा डरती थी, परिवार के भीतर का संबंध। और नतीजा?
नतीजा वही होता है, अमरंता उर्सुला एक बच्चे को जन्म देती है जिसकी स्वर की पूंछ है आखिरी बुएंडिया।
और वो खुद?
वो प्रसव में मर जाती है, अकेला दुखी ऑरेलियानो बाबिलोनिया, जब पांडुलिपि की आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा होता है।
ठीक उसी समय,
हाँ ठीक उसी समय, एक भयंकर तूफान आता है और पूरे मकोंडो को निगल जाता है। शहर और बुएंडिया वंश दोनों का नामो निशान मिट जाता है,
और हवा में गूंजती रह जाती है वो आखिरी पंक्ति,
क्योंकि 100 साल के एकांत की सजा पाने वाली नस्लों को पृथ्वी पर दूसरा अवसर नहीं मिलता।
एक अंतिम फैसला नियति का। किरदारों की बात करें तो इतने सारे पात्र हैं और नाम भी दोहराए जाते हैं, ऑरेलियानो, होसे अरकादियो, जैसे इतिहास रुक गया।
हाँ, वो चक्र, लेकिन कुछ किरदार मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं, जैसे संस्थापक पीढ़ी, होसे अरकादियो बुएंडिया, वो जुनूनी आदमी
जो आखिर में पेड़ से बंधा रहता है।
हाँ, और उर्सुला इग्वारान, वो कुल माता, 100 साल से ज्यादा जीती है, परिवार को बचाने की कोशिश करती है, अंधी होकर भी सब देखती है, वो शक्ति और संघर्ष का प्रतीक है।
और उनके बेटे कर्नल ऑरेलियानो, वो एकाकी योद्धा, और पहला बेटा होसे अरकाडियो,
वो पिता की तरह ही आवे की शक्तिशाली विशालकाय, उसकी जिंदगी और मौत दोनों ही रहस्यमयी और हिंसक।
और बहन अमारांता,
वो कड़वाहट और अधूरे प्यार में जीती है, अपना कफन खुद बुनते हुए मरती है। ये तीनों भाई बहन जैसे एकांत के अलग अलग चेहरे दिखाते हैं,
और बाद की पीढ़ियों में भी यही पैटर्न दिखता है। ऑरेलियानो सेगुंडो और होसे अरकाडियो सेगुंडो, वो जुड़वा भाई, एक भोगी दूसरा एकाकी गवाह।
हाँ, और मेमे जिसका जीवन वर्जित प्रेम के कारण तबाह हो गया, मॉरिसियो बाबिलोनिया के साथ जिसके आसपास हमेशा पीली तितलियां रहती थीं।
पीली तितलियां, वो उस दुखद अधूरे प्यार का प्रतीक बन गई।
बिल्कुल। और आखिर में ऑरेलियानो बाबिलोनिया, जो ज्ञान की खोज में एकांत में रहता है और अनजाने में परिवार के अंत का हिस्सा बनता है।
इन सबके बीच वो दो बाहरी किरदार भी महत्वपूर्ण हैं, मिल्कियादेस, जिसकी पांडुलिपि ही उपन्यास है, और
पिलटिनरा, वो जीवंत वेश्या, भविष्यवक्ता, जो कई पीढ़ियों को देखती है, बुंदिया मर्दों से जुड़ती है, ताश के पत्तों से भविष्य बताती है, वो जैसे धरती की निरंतरता का प्रतीक है।
तो इन किरदारों और घटनाओं से मुख्य विषय क्या उभरते हैं? पहला तो जाहिर है, एकाकीपन।
हाँ बिल्कुल, वो उपन्यास का केंद्र है। हर पात्र अपने ही एकांत में कैद है। ये सिर्फ अकेलापन नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव की, प्यार की, गर्व से उभरने की अक्षमता है। एक अभिशाप जैसा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है।
और दूसरा, समय। समय की वो चक्रीय धारणा।
हाँ, मार्केस सीधी रेखा वाले समय को नहीं मानते। उपन्यास का पहला वाक्य ही ये बता देता है, इतिहास यहाँ एक चक्र है, एक स्पाइरल।
वही नाम, वही गलतियां, वही जुनून।
बिल्कुल, जैसे मार्केस कह रहे हों कि अगर हम सीखते नहीं तो हम उसी चक्र में फंसे रहेंगे।
और इसी से जुड़ा है इतिहास और स्मृति का विषय, कैसे सच को दबाया जाता है, जैसे केले नरसंहार में।
हाँ, आधिकारिक इतिहास कैसे सच को छुपाता है और सिर्फ व्यक्तिगत याददाश्त ही उसे जिंदा रखती है। ये बहुत शक्तिशाली संदेश है कि इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है।
और फिर है जादुई यथार्थवाद। ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, शायद दुनिया को देखने का एक नजरिया है।
हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में वो अद्भुत का घुलमिल जाना, पादरी का उड़ना, रेमेडियोस का आसमान में जाना, वो पीली तितलियां, ये लैटिन अमेरिका की उन गहरी सच्चाइयों को पकड़ने का तरीका है, जहां हकीकत और सपना अलग नहीं है।
और अंत में वो वर्जित प्रेम, परिवार के भीतर का विनाश, सुअर की पूंछ वाला बच्चा जैसे उस अंतर्मुखी विनाश का प्रतीक है,
परिवार का अपने ही भीतर सिमट जाना।
उपन्यास की शैली भी अद्भुत है, वो तटस्थ, सपाट लहजा।
हाँ, कथावाचक जैसे कोई बाहरी इतिहासकार हो, जो सब कुछ बिना किसी भावुकता के दर्ज कर रहा है। इससे जादुई घटनाएं भी सामान्य लगने लगती हैं।
और प्रतीकों का इस्तेमाल, पीली तितलियां, सोने की मछलियां, वो बारिश, पांडुलिपियां,
ये सब कहानी को गहराई देते हैं। और वो पहला वाक्य तो कालजयी है। बरसों बाद जब कर्नल ऑरेलियानो बुएंदिया फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा था, उसे वो दूर की दोपहर याद आनी थी जब उसके पिता उसे बर्फ की खोज कराने ले गए थे।
एक वाक्य में अतीत, भविष्य, स्मृति, नियति, सब कुछ।
इसे पढ़ना एक गहरा अनुभव है, विस्मयकारी, दुखद, कहीं कहीं हास्यास्पद भी। आप पात्रों के साथ बहते जाते हैं, उनकी त्रासदियों पर दुखी होते हैं।
माकोंडो का बनना और बिगड़ना देखते हुए इतिहास के बोझ को महसूस करते हैं।
हाँ, ये समय, स्मृति, सच क्या है, इन सब पर सोचने को मजबूर करता है।
तो अंत में ये उपन्यास हमें क्या सिखाता है, आज भी क्यों प्रासंगिक है?
शायद ये हमें एकाकीपन के उस सार्वभौमिक संघर्ष की याद दिलाता है, और ये भी कि उससे निकलने के लिए हमें जुड़ना होगा।
हाँ, अपने होल से बाहर निकलना होगा, प्यार करना होगा, दूसरों को समझना होगा।
और इतिहास, इतिहास का चक्र तभी टूटेगा जब हम याद रखेंगे, सच का सामना करेंगे, वरना शायद वाकई दूसरा अवसर ना मिले।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।